Onchanti. Samrati. Vikramaditya. दरबार के नवरत्नों में जिसका नयन है और भारत का जो एक महान संस्कृत भाषा का कवि था कालिदास, उसके जीवन में एक वृत्तांत है। कहां तक सत्य है पता नहीं, पर बहुत सी बातें इस कवि के विषय में संदिग्ध है। जन्म के स्थान से लेकर तो जीवन की घटनाओं तक, कहा गया है कि वो छोटा था, अनपढ़ था और एक बार राजा का जो महल था और उसके बाजू में जो एक आम का बगीचा था, वो छुप छुप के वहां से आम खाता था। और एक बार सुबह सुबह दीवार लांग कर जब बगीचे में उसने प्रवेश किया और आम वहां से तोड़ा, तो राजा ने दूर से देख लिया उसे आम तोड़ते हुए। और फिर दिन के कारोबार में राजा जब भोजन कर रहा था तो चाकू से उसकी उंगली कट गई और बहुत खून बहने लगा। राजा ने तुरंत सभा बुलाई, विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और पूछा इस घटना का क्या महत्व है। तो सभी विद्वानों ने एक मत से कहा कि जरूर आपने सुबह सुबह कोई अशुभ व्यक्ति या घटना को देख लिया। राजा ने कहा हाँ, मैंने सुबह सुबह बगीचे में एक लड़के को आम तोड़ते हुए, आम की चोरी करते हुए देखा। तो सभी ने कहा यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वो बच्चा जरूर दुर्भाग्य का कारण बनेगा, तुरंत उसे दंड दिया जाए, वो बच्चे को लाया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। और उससे पूछते हैं कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो वो छोटा सा बालक कहता है यदि आप ये कहते हो कि मुझे देखने की वजह से आपके जीवन में दुर्भाग्य आ गया, तो इसके विपरीत मेरे जीवन में भी दुर्भाग्य आया आपको देखने की वजह से। यदि वो सत्य है कि आपने मुझे देखा और आपके जीवन में दुर्भाग्य आ गया, तो ये भी उतना ही सत्य है कि मैं पकड़ा गया और मुझे यहां पर लाया गया और मुझे सजा सुनाई जा रही है, तो ये भी तो दुर्भाग्य हुआ और इस दुर्भाग्य का कारण यही हुआ कि मैंने सुबह सुबह आपको देख लिया। राजा उसकी चतुराई से बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसे एडॉप्ट कर लेता है, दत्तक ले लेता है और फिर उसकी पढ़ाई लिखाई जो कुछ है सब कुछ करता है। ऐसी एक किंवदंती दंत कथा या कहानी गाई हुई है, इतनी सत्य है पता नहीं, परंतु मान्यता हमेशा ऐसी ही रही है कि हम जिसको सुबह सुबह देख लेते हैं उसी अनुसार दिनचर्या होती है। यदि किसी अशुभ को देख लो तो दिन भर में भी अशुभ होते रहता है, ऐसी ही मान्यता है। इस ब्राह्मण जीवन में हर एक ब्राह्मण आत्मा सुबह सुबह किसको देख लेता है, स्वयं भाग्य विधाता को देख लेता है, जिसके सुबह के दर्शन इतने शुभ हो, इतने कल्याणकारी हो, और जो स्वयं सुबह सुबह भगवान से मिलन मना ले, जिसके दिन की शुरुआत उसके दर्शन से हो जो सबके भाग्य को लिखने वाला है, तो उसका दिन कितना श्रेष्ठ, कितना महान होगा। परंतु उठते ही वास्तव में हम किसको देखते हैं, ये भी एक प्रश्न है। हमें मन के दर्पण में कौन दिखाई देता है? क्या वही सारे विचार जो रात थे, और वही सारा व्यर्थ जो शायद पिछले दिन चला था, या फिर ये खुशी, ये नशा, ये खुमारी, ये आँख खुली और स्वयं भगवान सामने हाजिर। हमारा व्यक्तिगत क्या अनुभव है? अभी अभी मुरली चली बाबा की शांतिवन में, सटीक प्रश्न पूछा है भगवान ने, अपने आप से पूछो, क्या मेरा पुरुषार्थ क्या है? क्या पूछो अपने आप से, मेरा पुरुषार्थ क्या है? बड़ा ही गहरा और बड़ा ही सूक्ष्म प्रश्न है कि मैं किस लक्ष्य से पुरुषार्थ कर रहा हूं, और मेरी आंतरिक तैयारी क्या है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, कल सुबह की क्या कहा बाबा ने, कौन किसको देख रहा है? भाग्य विधाता बाप किसको देख रहा है? भाग्यवान बच्चों को देख रहा है। भाग्यवान कौन? जो ब्राह्मण है वो भाग्यवान, जो भगवान के बने हैं वो भाग्यवान। ब्राह्मण बनना ही अर्थात भाग्यवान बनना। परंतु बाबा ने फिर प्रश्न भी पूछा है आगे, मैं कौन सा भाग्यवान बना हूं? 1,000 वाला, 1,00,000 वाला, 100 रुपए वाला कि भाग्यवान, कि सौभाग्यवान, या फिर पद्मा पदम भाग्यवान, या लाख वाला? कौन सा भाग्यवान? यदि कोई दूसरा कहे तो शायद मैं नहीं मानूंगा। इसलिए स्वयं अपने आप से पूछो, मैं कैसा भाग्यवान हूं? बाबा ने कहा दुख दर्द से छूट गए, दुख के बादल थे अब सुख के बादल मंडरा रहे हैं। तो स्वयं स्वयं से पूछना, स्वयं स्वयं से बात करना। सुबह बाबा ने मुरली में कहा, विचार सागर मंथन करो, कहां पर? एकांत में। स्वयं से बातें करो, स्वयं पर रहम करो, पूछो मेरा क्या पुरुषार्थ है। इस वाक्य को रोज रोज दोहराना है, मेरा पुरुषार्थ क्या है? भगवान उवाच, मेरा पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने ये मुरली भाग्य पर चलाई है, भाग्य विधाता भाग्य की परिभाषा दे रहा है, भाग्य विधाता भाग्यवान कौन है ये बतला रहा है, भाग्य विधाता उनसे मिल रहा है जो संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली है। तो फिर भी अंतर क्यों है, इसके भी कारण बताए। बाप ने सबको समान वर्षा दिया, पर अंतर कहां हो गया? किसने कितना कार्य में लगाया? सेवा में लगाया। भक्ति मार्ग में कहावत क्या है, खर्चो और खाओ। यहां पर भी खर्चो और खाओ तो शाहों का शाह बाप तुम्हें क्या कर देगा, माला माल कर देगा। ये प्रश्न हमेशा इतिहास में उठा है, श्रेष्ठ कौन है, पुरुषार्थ या भाग्य। विद्वानों ने कई उत्तर दिए हैं, सबसे अच्छा उत्तर है कर्म का फल भाग्य है। छोटा सा उत्तर है परंतु शक्तिशाली उत्तर है, कर्म का फल ही भाग्य है। भाग्य वो नहीं जो लिखा हुआ है पहले से, भाग्य हम रोज लिख रहे हैं, हर दिन लिख रहे हैं बैठकर, और हमारे हाथ में है हम अपना भाग्य कैसा लिख रहे हैं, किस रीति से लिख रहे हैं, कौन सी एडिशन कर रहे हैं उसमें। पुरातन चीन में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। एक गरीब किसान है जिसका एक बेटा है, छोटा सा घर है, कैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है, और एक ही घोड़ा है उसके पास, पर वो घोड़ा इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि राजा भी एक बार उसके पास आ गया और कहने लगा कि ये घोड़ा मैं लेना चाहता हूं, जो कीमत मांगोगे वो दूंगा। पर वो कहता है मुझे घोड़े से प्रेम है, और जिससे प्रेम है उसे बेचा नहीं जाता, इसलिए मैं इस घोड़े को नहीं बेचूंगा। सारे गांव वाले आते हैं, कहते भाग्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर चल कर आया, तुमने ठुकरा दिया, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। वो कहता है शायद। और कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा जंगल में जाता है और वापस लौट कर ही नहीं आता है, खो जाता है। फिर से सब लोग आते हैं, कहते अरे 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 बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ये दुर्भाग्य है कि तुम्हारा घोड़ा खो गया। वो कहता है शायद, शायद दुर्भाग्य है। और कुछ दिनों के बाद, कुछ मास के बाद वो घोड़ा वापस आ जाता है, पर अपने साथ सात और घोड़ों को लेके आता है जंगली। फिर से गांव वाले आते हैं, कहते तुम्हारा तो बहुत भाग्य है, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। वो कहता है शायद। और उसका बेटा कुछ दिनों के बाद एक घोड़े पर चढ़ता है घोड़सवारी सीखने के लिए, अश्वारोहण सीखने के लिए, और धड़ाम से गिरता है और पैर फ्रैक्चर हो जाता है। फिर से सारे गांव वाले आ जाते हैं, कहते हैं बहुत खराब हुआ तुम्हारे साथ, अशुभ हुआ, बड़ा ही दुर्भाग्य है। वो कहता है शायद दुर्भाग्य है। और कुछ दिनों के बाद जापान आक्रमण कर देता है चीन पर, और राजा आदेश देता है कि जितने नवयुवक है सबको लेके आओ सेना में भर्ती करने के लिए। सारे घरों में सैनिक जाते हैं, नव युवकों को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं, और जिनके घर से नव युवक जा रहे हैं वो माँ बाप जानते हैं कि ये वापस नहीं आएगा। जब इस किसान के घर आते हैं तो देखते हैं इसके बेटे को तो फ्रैक्चर है, इसको छोड़ देते हैं। फिर से सारे गांव वाले आ जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। वो कहता है शायद। लोगों को आश्चर्य होता है कैसा व्यक्ति है ये, उसके मन की स्थिति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, ना कुछ उसे भाग्य लग रहा है ना कुछ उसे दुर्भाग्य लग रहा है, सभी परिस्थितियों में समान है। और ऐसी सम स्थिति ही वास्तव में भाग्य की स्थिति है। यही सबसे बड़ा भाग्य है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें भाग्य ही दिखाई दे रहा है, यही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो बापा ने कहा अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, मैं कौन सा भाग्यशाली हूं। यदि ब्राह्मण बनने के बाद, यदि इस यज्ञ में आने के बाद, यदि इतना श्रेष्ठ ज्ञान पाने के बाद भी जीवन में दुख है और दर्द है और जीवन अभी भी विकारों से संपूर्ण रीति से मुक्त नहीं हुआ है, और यदि जीवन में अब भी संपूर्ण पवित्रता नहीं धारण की, तो क्या कहेंगे। सुबह की मुरली में बाबा ने कहा, सोचो, देखो, अपने आप से पूछो, कौन रोला डाल रहा है, किसमें? हर्षित रहने में। यदि इतना श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी जीवन में परिवर्तन नहीं, तो शायद इस ज्ञान को ही नहीं समझा है। ऐसा ज्ञान आज तक इस विश्व में किसी ने नहीं दिया। किसी शास्त्र में इतना श्रेष्ठ ज्ञान नहीं, किसी धर्म स्थापक ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया जो भगवान दे रहा है। इसलिए आज की मुरली में एकांत में जाकर क्या करो, विचार सागर मंथन करो। भगवान के वाक्यों का चिंतन, भगवान के वाक्यों का मंथन। क्यों वो ऐसा कहता है, क्या इसका मतितार्थ, क्या इसका भावार्थ क्या है, वो गूढ़ अर्थ क्या है, खोज। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि मैं जब सोता हूं तो मर जाता हूं, और जब उठता हूं तो मेरा पुनर्जन्म होता है। मैं जब सोता हूं तो मर जाता हूं, आज का दिन पूरा हुआ, आज जो कुछ हुआ वो हो गया, अब नया दिन, नया उमंग, नया उत्साह, नवजन्म है। और जैसा एक छोटा बच्चा होता है, उसे सब कुछ जानने की इच्छा है, इस जीवन में भी ऐसे समझो कि अभी अभी हमारा कोर्स चालू हो रहा है। सोचो उस दिनों में चले जाओ जब ज्ञान में आए थे, कैसी लगन थी और कैसा उत्साह था। शायद चलते 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 वो लगन, वो उत्साह खो गया। अब फिर से क्या बन जाना है, छोटा सा बालक, बच्चा, जिसे सब कुछ जानने की इच्छा है, ये क्या है, वो क्या है, ये वाक्य क्यों कहा, वो वाक्य क्यों कहा, इसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या, एक शब्द पढ़ लो तो उसके क्या अर्थ हो सकते हैं, ऐसा भगवान ने क्यों कहा, ये सारे प्रश्न मन में आने चाहिए। और जब तक ऐसे प्रश्न मन में नहीं, तब तक परिवर्तन भी नहीं। और पुरुषार्थ की परिभाषा एक शब्द में, पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन, वन वर्ड डेफिनेशन। यदि सारा पुरुषार्थ चालू है सुबह अमृत वेला से लेकर, मुरली सुनने से लेकर, तो योग युक्त होकर भोजन खाने से लेकर दिन भर सेवा करने तक का, परंतु उसमें परिवर्तन नहीं है, मूल स्वभाव वही है, मूल संस्कार वही है, वही चिड़चिड़ापन, वही क्रोध, प्रतिपल बदलना है, हर दिन नवीनता लानी है, हमारा आज कल से आगे हो और आने वाला कल आज से आगे हो, ऐसा पुरुषार्थ। कैसी गहरी चेकिंग, आत्मावलोकन की आवश्यकता है, किस मौन की आवश्यकता है, किस एकांत की आवश्यकता है, कितने अंतस्तल में जाने की आवश्यकता है, अंतर मन में छिपे हुए अपने ही भावों को समझने की आवश्यकता है। भावनाओं का जो परिवार हृदय में बसता है, उनको जानने की, समझने की, पड़ताल करने की आवश्यकता है, ताकि जो जो व्यर्थ है, जो जो अपवित्र है, जो जो अनावश्यक है, उसको हम निकाल सके। बाबा ने कहा, भाग्य को बढ़ाना अर्थात क्या करना, क्या करना, भाग्य की वृद्धि करनी है अर्थात क्या करना है, खजाने जो मिले हैं उनको क्या करना, कार्य में लगाना, रख नहीं देना है, कार्य में लगाना, सेवा में लगाना, स्वयं संपन्न बनना और औरों को संपन्न बनाना। आज की मुरली में है, हर दिन तुमको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, कौन सी, समझाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे। समझाना कैसा, निरंतर ज्ञान की अविरल धारा हमारे मुख से निकलती रहे, निरंतर ये प्रैक्टिस। तो ये क्या हुआ, ज्ञान के खजाने को कार्य में लगाना। नौ खजानों का गायन है, मुख्य नौ, बाकी तो खजाने अनगिनत है, अखूट है। पहला खजाना ज्ञान, ज्ञान सूर्य जब इस संसार में आता है और यहां के अंधकार को देखता है तो सबसे पहला खजाने जो देता है वो कौन सा है, ज्ञान। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ नहीं। यदि जीवन में उलझन है, जीवन में दर्द है, पीड़ा है, कोई व्याधि है, शायद ज्ञान की कमी है। सारा संसार बेचैन है, हम देखते हैं जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बहुत बेचैन होता है, ये बीमारी ये बीमारी, और जब नहीं बीमार होता है तब भी बेचैन होता है कि बीमारी आई क्यों नहीं, दोनों तरफ से बेचैनी रहती है। कोई अस्थमा का पेशेंट होगा, जब अटैक आता है तो बड़ा हलचल में आ जाता है, और जब नहीं आता है तो सोचता है अभी आया क्यों नहीं अभी तक। संसार हलचल में, सब और हलचल है, सब और दर्द है, दुख है, पीड़ा है। इसलिए बाबा ने आके सबसे प्रथम औषधि दी, ज्ञान। तो सबसे पहला खजाना ज्ञान, दूसरा खजाना गुण। मुरलियों में था, जैसे उस सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो उसकी किरणें हम ग्रहण करते, वैसे इस ज्ञान सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो क्या होगा, उसके गुणों की किरणें तुम धारण करोगे। ज्ञान गुण। तीसरा शक्ति है, शक्तिशाली बनने की विधि है, अशरीरी हो जाओ अपने आप शक्ति बहेगी। चौथा खजाना समय, बार बार एक चीज का अटेंशन देना है कि दिनचर्या में हमारा समय कहीं पर भी वेस्ट ना हो किसी भी कारण से, क्योंकि समय बहुत कम है। समय की चेतावनी दी है बाबा ने, शांतिवन में मुरली चली, क्या तुम्हें समय की पुकार सुनाई नहीं देती, तुम्हें भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती, अब तक भी कारण, कारण को अब निवारण करो और निर्वाण मिले जाओ आत्माओं को। ज्ञान गुण शक्ति समय, उसके बाद संकल्प। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है, संकल्प में बहुत शक्ति है, पावर है। संकल्प, संकल्प में प्योरिटी बढ़ती जाए, संकल्प में देह भान का सूक्ष्म रूप समाप्त होते जाए और संकल्पों में वैराग आते जाए। सब कुछ देखते हुए वैराग, यहां का कुछ भी नहीं चाहिए। संकल्पों में वैराग को धारण करना है, उसी से डिटैचमेंट आएगी। छठवां खजाना खुशी, हमारी खुशी सर्वोपरि है। किसी में इतनी शक्ति ना हो कि हम हमारे पास आकर हमारी खुशी ले जाए, छीन कर, चुरा कर। सातवां खजाना पवित्रता, कंप्लीट प्यूरिटी, कंप्लीट ब्रह्मचर्य। वो हर वस्तु, वो हर चीज, वो हर व्यक्ति, वो हर साधन, वो हर संबंध, वो मीडिया का कोई एक रूप जो ब्रह्मचर्य को भंग कर रहा है, उसको अभी के अभी दृढ़ संकल्प से समाप्त कर देना है, ताकि ऐसी कोई बात आए ही ना जिससे हम गिर जाए और फिर कारण देना पड़े। बाबा ने कहा, ये कारण आधा कल्प तुम्हारे साथ चला है, ये कारण ने हमेशा तुमको गिराया है, अब निवारण करो, अब निवारण की भाषा बोलो, कारण वाली नहीं, बहाने वाली नहीं। ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ। अखंड पवित्रता, कंप्लीट पवित्रता। आठवां खजाना दुआएं, दुआओं का खजाना। दुआएं कैसी मिलेगी? सेवाओं से, निस्वार्थ सेवाओं से, निष्काम सेवाओं से। सेवा कर दी और भूल जाओ। नौवां खजाना पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। ऐसे ये नौ खजाने हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, नौ खजाने। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे खजाने, बोल खजाना है, संतुष्टता खजाना है, श्रेष्ठ संस्कार खजाना है। तो वर्षा क्या मिला है? खजाना। इसको किसने कार्य में कितना लगाया है और किस विधि से लगाया है, इस आधार पर नंबर बन गए। कोई भाग्यवान बन गया, कोई सौभाग्यवान, कोई पद्मा पदम भाग्यवान, कोई 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख, 1 करोड़। तो जो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, इस मुरली में बाबा ने उनकी 8 निशानियां बताई है। जो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, उनकी 8 मुख्य निशानियां हैं। उन निशानियों की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके पहले एक और घटना याद आ रही है। आदि शंकराचार्य उड़पी के नजदीक किसी एक गांव में जाते, शायद वर्तमान शिवाली उस गांव का नाम है, और वहां पर पहुंचते ही एक गरीब किसान आता है और वो कहता है, मेरे घर में चलो, मेरा बेटा 13 साल का हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं बोलता, कैसा दुर्भाग्य लेकर जन्म लिया है पता नहीं, आप आओ और कुछ करो, आपके आगमन से कुछ हो सकता है। तो शंकराचार्य वहां जाते हैं, वो 13 साल का लड़का, अभी तक बचपन से एक शब्द भी उसने बोला नहीं है, और जैसे ही शंकराचार्य उस बच्चे को देखते हैं, उनको पता चलता है ये कोई साधारण बालक नहीं, स्पिरिचुअल कैलिबर इसका बहुत ऊंचा है, इसकी आध्यात्मिक प्रतिभा बहुत ऊंची है, कई जन्मों के आध्यात्मिक पुण्य को लेकर जन्म लिया है। वो उस बालक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम बात क्यों नहीं करते। पहली बार वो बालक बोलता है, क्या शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि उसकी महिमा की जाए? ऐसा ज्ञान लेकर वो जन्म लेता है कि सोचता है शब्द व्यर्थ है, क्या बोलना है, क्या शब्दों से परमात्मा के अनुभव बताए जा सकते हैं, वर्णन किए जा सकते हैं। और फिर वो बालक संस्कृत में ऐसे 12 श्लोक बोलता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और फिर शंकराचार्य उसके माँ बाप से कहते, ये बच्चा मुझे चाहिए, दे दो। माँ बाप भी अनुमति दे देते हैं, वो उसके साथ चलता है। हस्तमलक, हस्तकमल या हस्तमलक नाम का वो शिष्य, सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में चार मठ जो स्थापन होते, द्वारका का जो मठ होता है उसका वो प्रधान बनता है। ये आठवीं शताब्दी की बात है। वो बालक कहता है मैं क्या बोलूं, बोलना व्यर्थ है, बोल खजाना है, यदि कुछ बोलूं तो वो व्यर्थ ना हो, श्रेष्ठ हो, तो ही उसका महत्व है। अन्यथा सारे दिन भर बोल में ही कितनी ऊर्जा हमारी चली जाती है, व्यर्थ के बोल। तो बोल यदि खजाना है और इस बोल को यदि श्रेष्ठ कार्य में नहीं लगाया, यदि इस बोल को किसी की सेवा में नहीं लगाया, यदि इस बोल से स्वयं संपन्न न बनकर दूसरों को संपन्न न बनाया, तो क्या कहेंगे? तो किस कैटेगरी में मैं हूं, हजार वाले, लाख वाले कि केवल भाग्यवान? तो एक एक खजाना कार्य में लगाना। तो जो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, जो पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा है, उनकी बाबा ने आठ निशानियां सुनाई है। स्वयं को देखना है कि ये सारी निशानियां मुझ में है, मेरा पुरुषार्थ क्या है। सबसे पहले संकल्प, बोल, कर्म से, हर कदम में क्या करने वाले, पद्मों की कमाई करने वाले। तो पहली पॉइंट है इनकम। भाग्यवान अर्थात जिसकी इनकम ज्यादा हो, और इनकम कौन सी, संकल्प, बोल और कर्म की इनकम, और वो भी कहां, हर कदम में। जहां हम जाए आत्माओं का भाग्य जगा दे, जो हम बोले उस शब्द शब्द से सोई हुई चेतना जाग जाए, जो विकारों के गर्त में आत्मा डूबी हुई है वहां से फिर से निकल आए बाहर, और जो भटक गई है संसार में। आगे मुरली में कहा, यूपी ग्रुप से तुम सब कौन हो, गाइड हो, पंडे हो, तुम्हें राह दिखानी है। वो तो हरिद्वार में हरि के द्वार की राह का राह दिखाने वाले हम हैं, रहनुमा। तो सबसे पहली चीज, संकल्प वेस्ट ना हो, बोल वेस्ट ना हो और कर्म वेस्ट ना हो। और वर्तमान समय सबसे ज्यादा वेस्ट करने वाले कर्म है डिजिटल कर्म, टीवी, न्यूज, मैच, स्पोर्ट्स, सीरियल्स, सिनेमा, व्यर्थ के मैसेजेस, ये सबसे ज्यादा वेस्ट करने वाले कर्म है। बोल, बोल केवल बोलने वाले नहीं, लिखित बोल, संकल्प, दिन भर क्या चल रहा है मन में, केवल अपनी ही चिंता चालू है या विश्व का सोच रहे हैं। बाबा ने कहा भक्तों की आवाज सुनो, कैसे सुनाई आएगी, जो स्वयं अपने दुख दर्द में डूबा है वो दूसरों के दुख दर्द की आवाज कैसे सुन सकता है, जो केवल अपना ही पुरुषार्थ कर रहा है वो दूसरों के पुरुषार्थ को कैसे बढ़ा सकता है। सबसे पहली बात है कमाई। तो भाग्यशाली अर्थात क्या अनुभव होना चाहिए, कमाई बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, अकाउंट में हमारे पैसे ज्यादा जमा हो रहे, रोज जमा हो रहे, मैसेज आ रहा है मोबाइल पे कि आज इतने जमा हो गए, माइनस माइनस नहीं पॉजिटिव। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, तुम बच्चे जितना तुम्हारा जमा है इतना सोचते हो, उतना जमा नहीं है, क्योंकि तुम प्लस वाला देखते हो, माइनस वाले का तुमको पता ही नहीं है। तुम केवल वो देखते हो जो सारा जमा हुआ है, और जो निगेटिव हो रहा है दूसरों के अवगुण नहीं देखना है, स्वयं के तो देखने हैं। स्वयं के प्रति विकराल रूप, स्वयं के विकर्मों के प्रति काली रूप, स्वयं की चेकिंग के प्रति हिटलर स्वरूप, एकदम कड़क स्व के प्रति। दूसरों को माफ पर स्वयं को नहीं। यदि हुई है गलती तो क्यों हुई है, कारण क्या थे, ढूंढना उस कारण को और कारणों को हटा देना ताकि फिर से ना हो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक गलती दोबारा न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। ये एक परिभाषा है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बातें समय पर याद आ जाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात तीसरी परिभाषा, एक सेकंड पहले जो स्थिति थी अगले सेकंड उससे आगे। ये तीन परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थ की अलग अलग वाणियों में, ये तीव्र पुरुषार्थ है। तो सबसे पहली निशानी है इनकम। सेवा करने के बाद ऐसा लगे आत्मा भर गई है, शक्ति से भर गई है, खुशी से भर गई है, दुआओं से भर गई है, प्यूरिटी बढ़ गई है। जो व्यर्थ आ रहा था अब नहीं आ रहा है, जो इम्प्योर था वो अब प्योर हो गया है। पहली परिभाषा, पहली निशानी। दूसरी निशानी संकल्प बोल कर्म, उसी की जैसी निशानी है। मैं पद्मों को पद्मा पदम सेवाधारी बनकर कार्य में लगाना। जो भी खजाने मिले हैं उनको पद्मा पदम सेवाधारी बनकर कार्य में लगाना, ये सोचना। जैसे समय वेस्ट ना कर, जैसे संकल्प, जैसे बोल, जैसे खुशी, वो खुशी हमारे कार्य से परिलक्षित हो। ऐसा नहीं कि हम हैं तो बहुत खुश परंतु कार्य में उदास है, तो ये खजाने को कार्य में नहीं लगा रहे। मधुबन में आए हैं, ये तीर्थ स्थान पर आए हैं, परंतु यहां आते हुए भी संसार की यादें चल रही है, उधर का लौकिक याद आते रहता है, तो इसको क्या कहेंगे? किस पल में जी रहे, वर्तमान में या भूत में? ये खजानों को कार्य में लगाना नहीं हुआ। तो पहला इनकम और दूसरा कार्य में लगाते जाना। जो स्किल्स मिली है, जो विशेषता है उसको कार्य में लगाना, जो गुण हमारे में है उसको कार्य में लगाना, जो खूबी हम में है उसको यज्ञ में स्वाहा कर देना, ये दूसरा। तीसरा प्राक्तिल, तीसरा अखंड सेवाधारी, अखंड दाता, महादानी, मास्टर दाता बनना। सेवा का लंगर निरंतर चलता रहे, देते जाना देते जाना। जैसे गायन है निरंतर योगी, वैसा ही क्या गायन है, निरंतर सेवाधारी, नित्य निरंतर सेवा। बाबा ने कहा मनसा, मनसा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो कर्मना, कर्मना नहीं तो संबंध संपर्क, पर कुछ ना कुछ सेवा होती रहे। यहां कितने लोग आते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ समझाने की सेवा, ब्रह्मा बाप का परिचय देने की सेवा, चार धाम है उनका महत्व समझाने की सेवा, स्थूल सेवाएं, सूक्ष्म सेवाएं, कितने लोग बीमार पड़ते हैं उनकी सेवा, सब प्रकार की सेवा, तन मन धन वंशा वाचा कर्मना, हर प्रकार की सेवा, निरंतर सेवाधारी बनना। और क्या करते रहना है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। यह आध्यात्मिक गणित है। यहां पर आध्यात्मिक गणित कहता है, चार इक्वेशन है आध्यात्मिक गणित में। एक है एक और एक शून्य, दूसरा गणित है एक और एक दो, तीसरा गणित है एक और एक 11 और चौथा गणित है एक और एक पद्मा पदम। कैसे? पहला एक और एक शून्य, एक व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति को बहुत हानि पहुंचाई, दूसरा व्यक्ति उसको हानि पहुंचाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बच्चे बड़े होते हैं और उस व्यक्ति को मार देते हैं और वो भी जेल में चले जाते हैं, तो क्या हुआ? एक और एक मिलके कितना हो गया? शून्य हो गया। यह पहला गणित है। दूसरा गणित है एक और एक दो। ये साधारण, जैसे एक व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसके पास दूसरा आ गया, अब डबल काम हो गया, दो लोग आ गए। तीसरा गणित है एक और 11। ये क्या है? दो महान व्यक्ति सामने आ जाए, सम्मुख आ जाए, एक साथ आ जाए, तो उनके कंबाइंड संकल्पों के द्वारा जो कार्य होगा वो महान होगा। सांसारिक कार्य हो सकता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, दो महान व्यक्ति एक साथ आ गए, एक अति शक्तिशाली, एक महाबुद्धिमान, दोनों साथ में आ गए तो सारे भारत की राजनीति को बदल दिया, इतिहास को बदल दिया। और लास्ट इक्वेशन कौन सा है? एक और एक पद्मा पदम, ये कौन सा है? दो ब्राह्मण आत्मा एक साथ अगर आ जाए, किसी किसी शहर में, इतना बड़ा शहर, एक सेंटर, दो ही बहनें रहती है, पूरे नगर की पालना कर रही है, दो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा एक साथ आ गई और ऊंचे संकल्पों के साथ, तो उसका कितना हो गया? 11 नहीं, पद्मा पदम हो गया। तो हमारा हर कार्य महान। तो ये तीसरी बात, तीसरी निशानी आत्माओं की। उसके बाद में चौथी निशानी, पद्मा पद्म भाग्यशाली अर्थात पद्मासनधारी, कमल पुष्प के आसन पर विराजमान। उसमें दो बातें कही, एक तो न्यारापन हो, हद के आकर्षण से न्यारापन हो, और दूसरा जो कर्म का फल है हद का, उससे भी न्यारापन हो, अल्पकाल का जो फल है उससे भी न्यारापन हो, ये दो न्यारापन। तो कमल के आसन पर स्थित संसार के सभी आकर्षण एक तरफ, व्यर्थ से है, कोई भी हमें आकर्षित ना करे, ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित हो, तो ये ऐसी अगर है तो इसका मतलब हम पद्मा पद्म भाग्यशाली है। ये चौथी निशानी है। पांचवी निशानी है, सारा ब्राह्मण परिवार क्या करेगा ऐसी आत्माओं को? दिल के, स्नेह के, खुशी के पुष्प चढ़ाएगा उन पर। क्या करेगा? दिल के, स्नेह के, खुशी के पुष्प उन पर चढ़ाएगा। यदि ऐसा हो रहा है अर्थात हमारा भाग्य जग गया है, अर्थात हम पद्मा पद्म भाग्यशाली है यदि ऐसा हो रहा है। छठवीं निशानी, भगवान स्वयं बाप दादा क्या करेगा? बाप दादा भी पुष्प चढ़ाएगा, अर्थात ब्राह्मण परिवार की दुआ है और साथ साथ भगवान की दुआ है, और भगवान की दुआएं प्राप्त करने का क्या साधन है? जो वो कहता है वो करना। बाबा कहते हैं यहां आओ, बच्चे कहते हैं ठंडी है, गर्मी है, आज सुबह की मुरली, हम नहीं आएंगे। बाप कहते आओ, वो कहते हैं ना हम नहीं आएंगे, हमको ठंडी बहुत लगती है आबू में, हम अपने हीटर मिलता नहीं वहां पर, हमको ठंडी बहुत ज्यादा है। तो बाप कहते आओ, वो कहते नहीं। अब बाप क्या कर सकता है? तो बाप की भी दुआएं, बाप भी ऊपर से पुष्पों की वर्षा करता है। यदि कोई भोजन बना रहा है भंडारे में और बहुत मगन अवस्था में बाबा की याद में बना रहा है, तो बाबा ऊपर से क्या करेगा? पुष्प की वर्षा करेगा, ऊपर से वर्षा होगी उस पर, अदृश्य होगी। पर यहां सारा खेल ही अदृश्य का है, सब अदृश्य है। और ये भी कितना अच्छा अभ्यास है, भोजन बनाना बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। ये हम भोजन बना रहे हैं और ऊपर से शिव बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, भोजन में जा रही है, और जो जो इसको खाएगा उसमें बेहद की पवित्रता आ जाएगी, परमात्मा प्रेम के अंकुर फूटेंगे, ऐसा भाव। तो ये छठवी निशानी। सातवी निशानी, मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकेगा और दूसरी आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी प्राप्त होगी। तो रोशनी लाइट मिलेगी दूसरों को, यदि ऐसा हो रहा है तो समझना क्या है, ये भाग्य हमारा उदित हुआ है, भाग्य खुल गया है। और लास्ट निशानी आठवीं, कौन सी? बाप के समीप और समान। ऐसी आत्माएं दिल में समा जाएगी बाबा के। तो ऐसी आठ ये निशानी है। सबसे पहली निशानी बताई इनकम, दूसरी निशानी सेवा में लगाना, तीसरी निशानी फ्राक दिल रहम दिल दाता, देने का भाव, हमको देना है। चौथी निशानी कमल फूल समान डिटैच्ड। छठवीं निशानी ब्राह्मण परिवार के द्वारा पुष्प। सातवीं निशानी भगवान के द्वारा पुष्प। और सात समीप रहना, लाइट अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से विश्व को प्रकाशित करना। और लास्ट निशानी समीप और समान। तो फिर से एक ही प्रश्न है, मैं कौन सा भाग्यवान हूं? और एक स्वर्ग के बारे में भी प्रश्न पूछा है महामन ने, स्वर्ग में आना अच्छा है परंतु अच्छा से अच्छा नहीं है, कब और कहां आ रहा हूं, ये प्रश्न स्वयं से पूछना है। तो इस मुरली में, ये तो मेन मुरली थी, और पार्टियों से मुलाकात की चर्चा कहीं और कर चुके हैं तो उसकी चर्चा फिर हम नहीं करेंगे। तो अपने भाग्य की लिस्ट बनाना बैठे बैठे, क्या क्या मुझे पापा से मिला है, तो मन खुशियों में नाचने लगेगा। एकांत में विचार सागर मंथन करना, ऐसे, अब आप बताओ कैसे, ऐसे पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माओं को, ऐसे पद्म आसनधारी आत्माओं को, ऐसे स्वयं संपन्न बन दूसरों को संपन्न बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे निरंतर जो सेवा का लंगर जिनका चल रहा है चलाने वाली आत्माओं को, ऐसे अखंड सेवाधारी निरंतर सेवाधारी निरंतर योगी फ्राक दिल आत्माओं को, ऐसे भाग्य स्वयं भाग्य का सितारा जिनके मस्तक पर चमक रहा है और दूसरों को भाग्यवान बनने की रोशनी देने वाली आत्माओं को, ऐसे भगवान भी जिन पर पुष्प अर्पित करे, ब्राह्मण परिवार भी जिन पर पुष्प अर्पित करे, ऐसी आत्माओं को, ऐसे जो दिल में समाये हुए और बाप के समीप है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे 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 सारे खजानों को सेवा में लगाने वाली आत्माओं को, कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे अपनी इनकम हर दिन बढ़ाने वाली आत्माओं को और दूसरे की भी इनकम बढ़ाने वाली आत्माओं को, अपने और दूसरों की भी इनकम की भी चिंता है उनको, तो ऐसी आत्माओं को, खर्चने और खाने वाली आत्माओं को, ऐसे बोलो तो, ऐसे ऐसे विघ्न विनाशक गणेश आत्माओं को, ऐसे गाइड आत्माओं को, ऐसे चंदन समान खुशबू फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी गुलाब बनने वाली आत्माओं को, ऐसे विदेशी जोर से अटैच भी होते हैं जोर से डिटैच भी होते हैं, होस्ट बनकर आते हैं और गेस्ट बनकर आते हैं और होस्ट बन जाते हैं, ऐसी अवतरित आत्माओं को, ऐसी संदेशी आत्माओं को, ऐसी हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माओं को, ऐसी सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।